सूरत सजदा, मक्की सूरत है, 30 आयात हैं इसकी और ये 3 रुकू पर मुश्तमिल है। अब तक आपने जितनी सूरतें पढ़ी हैं तो आप देखें ये उनमें सबसे छोटी सूरत है। तो अब छोटी सूरतों की तरफ आप आ रहे हैं और इस सूरत में कलमात की तादाद है 380, हरूफ की तादाद है 1518 और इसकी आयत नंबर 15 में जो है वो जो सजदे का मजमून आया है उसी को इस सूरत का उन्वान करार दिया गया है। इसका जमाने नजूल जो है ये मक्का का दरमियानी दौर है, दौरे मुतवसत, और ये वो जमाना है कि अभी मुसलमानों पर जुल्म व सितम की वो शिद्दत नजर नहीं आती जो बाद के अदवार में हमें मिलती है। इसका मौजू क्या है? इसमें तौहीद, आखरत और रिसालत के मुतल्लिक जो लोगों के जेहन में शुभात थे उन्हें दूर करना और इन तीनों अकायद पर ईमान लाने की दावत देना। ये वो सूरत है जिसके बारे में हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो मामूल है आपका ये पता चलता है। जैसे आप देखिए कि हजरत इमाम बुखारी ने किताबुल जुमा में ये हदीस नकल की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन सुबह की नमाज में अलिफ लाम मीम सजदा और सूरत दहर पढ़ा करते थे। इसी तरह हमें एक और रवायत मिलती है और इस रवायत से क्या पता चलता है जो तिर्मिजी की और मुसनद अहमद की है कि रात को सोने से पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलिफ लाम मीम सजदा और सूरत मुल्क जो है तबारक अल्लाजी वो पढ़ लिया करते थे। और हमें पता चलता है कि हुजूर हमेशा सोने से पहले सूरत हामीम सजदा, सूरत जो अलिफ लामीम सजदा है वो पढ़ा करते थे, ये वाली सूरत और इसके अलावा सूरत मुल्क जो थे वो पढ़ा करते थे। तो इससे हमें क्या बात पता चलती है कि ये सूरत बहुत अहम सूरतों में से है। आखिर इसके अंदर कौन सी ऐसी बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं एक तरफ जुमे के दिन सुबह की नमाज में अलिफ लाम मीम सजदा पढ़ते थे और दूसरी तरफ जो है वो सोने से पहले अलिफ लाम मीम सजदा जो थे वो पढ़ते थे। तो असल में सजदा कहते ही बंदगी झुका देने को है। तो इसका निचोड़ क्या है सूरत का कि मैं और आप भी अपना आप अल्लाह के आगे झुका दें। आइए इसको समझते हैं। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम जो है ये हरूफे मुकत्तात में से है और सूरत लुकमान का नाम भी कुरानी नाम अलिफ लाम मीम है और इस तरह से इस सूरत का नाम भी अलिफ लाम मीम है। तो सूरत लुकमान और सूरत सजदा जो है ये दोनों सूरतें जो हैं वो जोड़ा जोड़ा है। तमहीद भी दोनों की एक ही तरह की है, शुरू में मजमून भी कुरान से मुतल्लिक है, मिलता जुलता है और सूरत लुकमान का अगर आप दूसरा नाम सोचें कि क्या होना चाहिए तो शुक्र, कि इंसान शुक्र क्यों नहीं अदा करता। और इस सूरत के अंदर भी जो है वो शुक्र जो है उसकी उसका मुतालबा किया गया है कि अरबों पर अल्लाह के बड़े एहसानात हैं तो फिर वो शुक्र क्यों नहीं अदा करते। तो अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुकत्तात हैं और आप देखें कि आगाज जो है बड़ा खूबसूरत है, बड़ा बेहतरीन है क्योंकि अलिफ लाम मीम ये क्या था कि ये हुरूफ हैं। तो हुरूफ जिन हुरूफ से कुरान बना है वो कौन से हैं? यही तो हैं हरूफ तहजी। लेकिन अहले अरब हरूफ तहजी तो जानते थे लेकिन कुरान की नजीर पेश ना कर सके। तो अल्लाह ताला ने बड़े रोब के साथ और बड़े जलाल के साथ बड़े बेहतरीन अंदाज में अलिफ लाम मीम हरूफ मुकत्ता से इस सूरत का आगाज किया है। इसके मानी अल्लाह ही जानता है कि मुमकिन है रसूल अल्लाह को बताए हों, बहरहाल अल्लाह ही इसके मानी ज्यादा बेहतर जानता है। तो अलिफ लाम मीम तंजीलुल किताबी, अल किताब की तंजील। तंजील जो है यहां पे अल्लाह ताला ने तंजील कहा, नजला नहीं कहा। नजला उतरना होता है, अनजला उतारना होता है اور تنزیل کے معنی ہوتے ہیں صرف اتارنا نہیں بلکہ خاص اہتمام کے ساتھ درجہ بدرجہ اتارنا. تو اللہ تعالیٰ نے الکتاب کو بڑے خاص اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ اتارا ہے. کیوں اتارا ہے؟ جب جب جیسے جیسے ضرورت پیش آئی مکہ کی گلیوں میں، جیسے جیسے حالات پیش آ رہے تھے مکہ کی وادیوں میں، چٹانوں میں، گھروں میں، اس ضرورت اور حالات کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے اہتمام کے ساتھ درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کرتے رہے، مکہ میں یا پھر مدینہ میں. اور الکتاب کتاب نہیں ہے، الکتاب خاص کتاب ہے. کیا مراد ہے؟ قرآن مجید. قرآن مجید جو ہے اس کو اتارا گیا. اب اتنا ہی کافی ہے کہ تنزیل الکتابی، اتارنے کا انداز بھی خاص ہے، کتاب بھی خاص ہے، لیکن پھر تاکید کے لیے کہا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ منزل من اللہ ہے، قطن شک کی گنجائش نہیں ہے. اہل مکہ قرآن کا انکار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن مجید جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. البقرہ کا آغاز بھی تو ایسے ہی ہوا نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں پہ بھی کہا لا ریب فیہ، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر کہا من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے ہے جو رب ہے العالمین کا. تو معنی کیا ہے؟ کہ اس رب کی طرف سے ہے جو کہ جہانوں کا رب ہے. اللہ رب العزت کی ذات کیسی ہے؟ کہ جس نے تمام دنیا کو پیدا کیا تو اسی نے انسانوں کی ضرورت کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا. تو یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، ہر اس کی آیت کے حصے کو دیکھیں، ہر ایک سے ایک تاکید، اہمیت، فضیلت، اہتمام جو ہے نا وہ جھلکتا ہے اور ٹپکتا ہے. تو ان ساری باتوں کا مطلب اور نچوڑ کیا ہے کہ لوگوں، قرآن جھوٹ نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ من گھڑت قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ تو رب العالمین کی طرف سے صحیفہ ہدایت ہے. اور افسوس کہ لوگوں نے کیا کہا، ام یقولو نفتراہو، ام کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ افتراہو، اس نے اس کو گھڑ لیا ہے. اب یہاں پہ استفہام نہیں ہے صرف، سوالیہ انداز نہیں ہے صرف، بلکہ کیا ہے؟ تعجب کا انداز ہے. استفہام کے ساتھ ساتھ استفہامیہ انداز بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ایک ڈانٹ بھی ہے، تعجب بھی ہے، اس پہ حیرت بھی ہے کہ کیسی حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ لوگ حق کی مخالفت میں ایسے اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں. کہتے ہیں افتراہو، ہو جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو گھڑ لیا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اہل مکہ جو تھے وہ حق کی مخالفت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ کتاب الہی کو مانتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ یہ بات کہتے تھے کہ افتراہو، کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ گھڑ لیا ہے. تو معنی کیا ہے؟ کہ وہ جو تھے وہ رسول اللہ پر الزام لگاتے تھے، آپ کو جھوٹا کہتے تھے. کہا بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. اب آپ دیکھیں کہ مکہ کی گلیوں کا آپ ذرا سا تصور کریں. آپ نے سیرت پڑھی ہے، مکی دور آپ نے پڑھا ہے نا رحیق المختوم میں، اور ویسے بھی سیرت کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی، کہ مکی دور جب قرآن نازل ہو رہا تھا، ہر روز یا کچھ وقفوں سے جو آیات اور صورتیں نازل ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ کی گلیوں میں جا کر سناتے، تو مکہ کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے، کبھی جادوگر، کبھی شاعر، کبھی کاہن، مجنو اور دیوانہ کہتے، اور کبھی کہتے کہ قرآن جادو ہے، قرآن جو ہے یہ گھڑی ہوئی کتاب ہے، آپ کو کوئی آ کر سکھا جاتا ہے، یہ تو شاعری کی باتیں ہیں جو اثر کرتی ہیں. کہا بل هو الحق، اب حق ہوتا یہ بھی کافی تھا الحق کہا، بلکہ وہ تو حق ہے نا، حق ہے. من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے. رب کون ہوتا ہے؟ وہ رب جو کہ انسان کو ایک حقیر سے نطفے سے وجود میں لا کر پھر اس کو ایک جیتا جاگتا شاہکار بنا دیتا ہے، ماسٹر پیس، जिंदा जीता जागता, ऊंचा लंबा। तो जिस रब ने इंसान को पैदा किया, कायनात उसके लिए सजाई, उसने उसकी रूहानी जरूरत का जो है वो ख्याल रखते हुए, उसका एहतमाम करते हुए कुरान को नाजिल किया। बल हुवल हक मिन रब्बिका, नहीं बल्कि ये हक है तेरे रब की तरफ से। अब लारे वफी कह दिया था, फिर ये कहने की क्या जरूरत पेश आई कि हुवल हक मिन रब्बिका। बल्कि बात क्या है कि ताकीद की जा रही है कि हक है तेरे रब की तरफ से, कि लोगों ए मक्का वालों इसको झूठ मत समझो। ये कौन है, किस माहौल में, किस शान के साथ ये किताब पेश कर रहा है? और अहले मक्का आपको अमीन और सादिक तो मानते ही थे, कभी कहते थे आपको झूठा नहीं कहते, बस ये जो किताब है ना ये हमारी समझ में नहीं आती। एक जगह आप पढ़ ही चुकी हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ये रब का इनकार करते हैं, है ना? तो असल बात क्या है कि बार बार जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दिन के वक्त सूरज चमक रहा हो और कोई ढीठ इंसान ये कहे कि अंधेरी रात है। अब इतना कहना काफी नहीं है कि तुम इसे रात कहते हो, ये रोजन, ये दिन तो रोशन मौजूद है तुम्हारे सामने है, इतना कहना काफी नहीं है। बल्कि क्या बार बार कहा जा रहा है, दिन नहीं बल्कि दिन रोशन है, सिराज है, सिराज है, वहाज है। तो बहरहाल बिल्कुल इसी तरह कहा जा रहा है, हक है तेरे रब की तरफ से। ये कुरान क्यों नाजिल किया, आपको रसूल क्यों बनाकर भेजा गया, कुरान आप पर क्यों उतरा, तंजील इसकी क्यों हुई? लेतुन जिरा, ताकि आप डराएं। कौमन, एक कौम को, कौम से मुराद अहले कुरैश भी हैं और कहते हैं कि पूरा अरब मुराद है। मा अताहुम, नहीं आया इनके पास, मिन नजीरन कोई डराने वाला, मिन कबली का इससे पहले। तो इसलिए आपको यह कुरान मजीद दिया गया ताकि आप इसके जरिए से एक ऐसी कौम को डराएं जिसके पास तुझसे पहले कोई मुतनब्बे करने वाला नहीं आया। और क्यों डराएं, डराने का मकसद क्या है, कुरान सुनाने का मकसद क्या है? लअल्लहुम यहतदून, शायद के वो हदायत पा जाएं। तो इस पूरी बात से जो हमारे सामने बात आई वो क्या है, कुरान हक है, मिन जानिब अल्लाह है, कतई यकीनी अमर है, और ये लोगों के लिए रहमत के तौर पर आया है। अब आप देख लीजिए कि अहले मक्का और अरब जो था कितनी जहालत में डूबा हुआ था, कितनी तारीकी थी वहां पे, कितनी उनकी उनके अंदर जहालत और इखलाकी पस्ती पाई जाती थी कि उनको बेदार करने के लिए, राह रास्त दिखाने के लिए अल्लाह ने एक पैगंबर को भेजा, तो उस पर हैरान हुए। फिर अब अल हक कुरान मजीद नाजिल किया तो उस पर हैरान हुए। अब यहां पे ये क्यों कहा कि इससे पहले उनके पास कोई डराने वाला नहीं आया था, ये क्यों कहा अल्लाह ताला ने? इसलिए कि अरब में दीन हक की रोशनी सबसे पहले हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने, फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन तक पहुंचाई, और तारीख में आप ये पढ़ ही चुकी हैं, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, इनका जमाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से 2500 साल पहले, जो पहले का जमाना है। फिर इसके बाद जो है वो आखिरी पैगंबर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो आखिरी पैगंबर भेजे गए वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे, शुएब अलैहिस्सलाम भेजे गए, फिर आखिरी पैगंबर भेजे गए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अरब की सरजमीन पर हजरत हूद, हजरत सालेह, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल और आपके भेजे जाने से पहले जो आप आखिरी पैगंबर थे, आपके भेजे जाने से पहले आखिरी पैगंबर जो भेजे गए वो कौन थे, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। तो अब जो है बाकी जितने भी नबी आए हैं ज्यादातर शाम और फिलिस्तीन के इलाके में आए हैं। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और रसूल अल्लाह का दरमियानी वक्फा कितना है, कहते हैं तकरीबन 2000 साल के लगभग। और ये 2000 के साल का अरसा जो है ये एक तवील मुद्दत है जिसमें बहुत से अंबिया अरब की हदूद से बाहर आते रहे। इसीलिए फरमाया कि अहले अरब के पास कोई डराने वाला जो है वो नहीं भेजा। अब यहां पर एक और सवाल फिर सामने आता है और एक खटक पैदा होती है जहन में कि जब रसूल अल्लाह से पहले कई साल तक कोई अरब में नबी आया ही नहीं, तो तो फिर उस जमाने के जो लोग थे उनसे अल्लाह किस बुनियाद पर बात पूछ करेगा? अल्लाह पूछेगा क्यों? क्योंकि नबी तो आए नहीं, कितने साल तक नहीं आए, लोगों को पता ही नहीं था हदायत क्या है, गुमराही क्या है, फिर वो गुमराही के जिम्मेदार कैसे करार दिए जा सकते हैं? तो असल बात क्या है कि इससे क्या बात पता चलती है? मुफस्सरीन ये कहते हैं कि बेशक कई अरसा वहां पे कोई नबी नहीं आया था, लेकिन उस जमाने में भी, जैसे रसूल अल्लाह के आने से पहले का जो जमाना था, उस जमाने में भी लोगों से ये बात पोशीदा नहीं थी कि असल दीन तौहीद है, और अंबिया ने कभी उनको बुत परस्ती नहीं सिखाई थी। और हकीकत क्या थी कि उनकी अपनी रवायात में जो चीज महफूज थी, या फिर अरब के जो करीबी इलाकों में, बाहर के इलाकों में जो अंबिया आए थे, उन जराए से अरब वालों तक ये बात पहुंची थी। क्योंकि करीबी जो बाहर के इलाके थे, वहां पे कौन से नबी आते रहे? जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इनकी तालीमात आती रही और अरब वालों तक भी वो तालीमात पहुंची। तो अरब की रवायात में ये बात मशहूर थी, मारूफ थी कि कदीम जमाने में अहले अरब का असल दीन दीन इब्राहिमी था, और बुत परस्ती उनके यहाँ अमर बिन लोही नामी एक शख्स ने शुरू की थी। और वरना क्या था, लोग तौहीद का ऐलान करते थे, शिर्क का इनकार करते थे। और खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद से बिल्कुल करीब के जमाने में, तकरीबन अगर आप तारीख का मुताला करें तो बहुत से ऐसे लोगों के हालात मिलते हैं जिन्हें लोग हुनाफा के नाम से याद करते हैं। और वो लोग कौन से थे? अलल ऐलान तौहीद का ऐलान करते थे, ऐलानिया तौर पर अलल ऐलान तौहीद का इकरार करते थे, और मुशरिकीन के मजहब से अपनी बेजारी का इजहार करते थे। मसलन वो कौन से लोग थे? जैसे उस बिन सायदा, उमैया बिन अबी सल्त, सुएद बिन अमर, वकी बिन सलमा, अमर बिन जुंदुब, अबू कैस, जैद बिन अमर, वरका बिन नौफल, उस्मान बिन हुवैरस, उबैदुल्ला बिन जहश, आमिर, फिर इसके बाद जो है बादवानी, अल्लाफ, अल मुतलमिस, जुहैर, खालिद, अब्दुल्ला। तो तकरीबन मैंने आपको 16 नाम बताए हैं, और 16 नाम अब लोग इनको हुनाफा के नाम से याद करते थे। इसके अलावा भी कई लोग थे, और वैसे भी कहते हैं कि चौथी या पांचवी सदी ईस्वी में जो मिले हैं आसारे कदीमा की खुदाई में, कुछ कतबे मिले हैं, तो उन पर भी जो चीज लिखी हुई थी क्या थी? ये लिखा हुआ था कि रब्बु समाई वल अर्थ, ये लिखा हुआ मिला है, या फिर इलाहे जवी समय, इलाहे समा या रब्बु समा की इबारत लिखी हुई मिली है, या फिर बिस्मे अल इलाह, ला इज्जा इल्ला लहू, ला शुक्रा इल्ला लहू के अल्फाज लिखे हुए जो है वो मिले हैं। तो गोया के पहले अंबिया की जो तालीमात थी वो मिट नहीं गई। तो ये बातें काफी थी उनको याद दिलाने के लिए। और यहाँ पे भी अल्लाह ताला कहते हैं ताकि आप एक ऐसी कौम को डराएं जिनके पास तुझसे पहले कोई मुतनब्बे करने वाला नहीं आया, और शायद के वो जो है वो हदायत पा जाए। तो यहां पर क्या बात हमारे सामने आती है कि रसूल की आमद हदायत हदायत का जरिया है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा क्या है? हदायत। इसी तरह कुरान मजीद जो नाजिल हुआ वो इसलिए थोड़ी नाजिल हुआ कि मुझे और आपको मुश्किलात में डाल दे। जैसे बाद लोग कुरानी क्लासेस में नहीं आते कि फिर पता चल जाएगा तो फिर मुश्किल होगी, है ना? तो असल बात क्या है कि कुरान मजीद हो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हो, तो अल्लाह ताला ने नजीर लितुनजिरा डराने के लिए भेजा, मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ, प्यार के साथ, ताकि लोग जो हैं वो अपनी जो जिंदगी है उसके जाविये बदलें, ताकि लोग जो हैं वो अमल करने लगें। तो फिर हमें करना क्या है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे क्या था उनका हाल कि वो आए और आए भी कुरान लिए हुए, तंजीम कायनात का समा लिए हुए, निकला हिरा के गार से वो नाजिशे मसीह, सारे जहां के दर्द का दरमा लिए हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमें क्या करना है? जो तुम्हारे नबी ने दिए हैं तुम्हें इन उसूलों से आराइशे जां करो, रास्ते का अंधेरा भी छुट जाएगा, दीदा और दिल तो अपने फिरोजा करो। फिर सजाना दिए तुम दरो बाम पर, अपने सीनों में पहले चरागा करो। बू हर एक सांस से आए ईमां की, हर मुसलमान हो तस्वीर कुरआन की। तो होना क्या चाहिए कि कुरान मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उनसे हम अपनी जिंदगी के अंधेरे जो हैं वो दूर करें। अहले मक्का जो है उन्हें तंबीह की जा रही है कि उन्होंने रसूल का इनकार किया और कुरान का इनकार किया। तो रसूल का इनकार अल्लाह का इनकार है, कुरान का इनकार अल्लाह का इनकार है। तो आज मुसलमानों को अपनी जिंदगियों का जायजा लेना चाहिए कि हम कहां पर खड़े हैं और हम क्या कर रहे हैं। सुमस्तवा अलल अर्श, फिर इसके बाद वो जो है वो जलवा फरमा हुआ अर्श पर। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है, यानी आप देख लीजिए कि आयत नंबर जो 4 है इसमें दरमियान में करके आता है ना सुमस्तवा अलल अर्श, तो इसका आगाज कैसे होता है? अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाती वल अर्दा, वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया। तो अल्लाह कौन है? खालिक। अहले मक्का अल्लाह को खालिक तो मानते थे आसमान और जमीन का। फिर अल्लाह ताला कहते हैं वमा बैनहुमा फी सित्तते अय्याम, और जो कुछ इनके दरमियान में है उसको 6 दिनों में पैदा किया। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाती वल अर्दा वमा बैनहुमा फी सित्तते अय्याम, अल्लाह वो जात है जिसने पैदा किया आसमानों को और जमीन को, वमा बैनहुमा और जो इन दोनों के दरमियान है। दोनों से मुराद क्या है? आसमान और जमीन, जो कुछ इन दोनों के दरमियान है। कितने अरसे में पैदा किया? फी सित्तते अय्याम, 6 दिनों में। तो ये आयत बता रही है कि अल्लाह खालिक है और अल्लाह ने जो आसमान और जमीन और जो कुछ इसके दरमियान है उसको पैदा करने में अल्लाह को ज्यादा देर नहीं लगी, सिर्फ 6 दिन। और इन 6 दिनों को मैं और आप अपने दिन शुमार ना करें, क्योंकि इसका इसकी कैफियत इसका अंदाज अल्लाह ही ज्यादा बेहतर जानता है। सुमस्तवा अलल अर्श, फिर इसके बाद वो अर्श पर जलवा फरमा हुआ, इसके क्या मानी है? कि इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात जो है उसने क्या किया, वो अर्श पर कायम हुआ। अब आप देखिए कि ये मजमून आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, सूरत आराफ में आपने इसको पढ़ा और आयतल कुर्सी को आप देख लीजिए और कुरान में जगह जगह ये मजमून आता है। तो दोहराने का मकसद क्या है? अल्लाह के कमाल कुदरत और उसकी कारीगरी के जो अजायबात हैं उसका जिक्र करने का मकसद क्या है? कि लोग कुरान को सुने और रसूल पर ईमान लाएं। और सुमस्तवा अलल अर्श जो है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि इस तवा की कैफियत क्या है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूं, आप इसको याद कर लें। आपने उसका जवाब दिया था इस तवा मालूम है, कैफ मजहूल है और इसके बारे में सवाल करना बिद्दत है। क्या मानी है? बस हमें इतना पता है कि इस तवा जो यहाँ पे कहा गया, क्योंकि ये आय कुरान की आयतें 2 तरह की हैं, कुछ मुहकमात हैं और कुछ मुतशाबिहात हैं। ये मुतशाबिहात में से है, तो कहा कि इस तवा मालूम है, बस अल्लाह ने ये कहा कि इस तवा, अब अल्लाह ही इसकी कैफियत जानता है कि वो किस तरह है। इस तवा मालूम है, कैफ से मुराद कैफियत मजहूल है, मजहूल पता नहीं है ना कि कैसी है किस तरह है, कैफ मजहूल है और इसके बारे में सवाल करना बिद्दत है, तो सवाल नहीं करना चाहिए। फिर क्या है? मा लकुम मिन दूनही मिन वलीयिन वला शफीअ, इसके सिवा कोई नहीं है। दून जो है इसके मानी सिवा के भी है और मकाबिल, ये दोनों का मफहूम देता है। ये लफ्ज दून जो है वैसे आपको पता है ज़वील अज़दाद में से है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी आगे कभी पीछे, मुख्तलिफ मानी देता है ना। तो यहाँ पे क्या है? इसके सिवा कोई नहीं है। कौन? वली। वली कहते हैं दोस्त को और शदें आई हुई हैं, तो इसके सिवा कोई दोस्त नहीं है, कोई मददगार नहीं है, कोई हमायती नहीं है अल्लाह के सिवा। वला शफी, और ना ही कोई सिफारिश करने वाला है। शीन फा ऐन के मानी क्या होते हैं? कि दो चीजों को मिलाना, जोड़ा बनाना, किसी की राय से अपनी राय मिलाना। तो वतर होता है एक ताक और शफ होता है जोड़ा। तो अब क्या है कि उसके साथ उसके आगे कोई सिफारिश करने वाला नहीं है। तो अहले मक्का क्या कर रहे थे, वो अल्लाह को जमीन और आसमान का खालिक तो मानते थे, लेकिन फिर क्या करते थे कि ये अजीमु शान जो कायनात है इसमें औरों को अल्लाह के साथ शरीक करते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब खालिक अकेला वो है, जब फिर पैदा करके वो कहीं चला नहीं गया, सुम्मा स्तवा अलल अर्श, क्योंकि यहूदी क्या समझते थे कि 6 दिन में अल्लाह ने आसमान जमीन को पैदा किया, फिर उसके बाद जो है 7वें दिन उसने आराम किया। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि 6 दिन में पैदा करने के बाद वो कहीं बैठ नहीं गया, फिर वो हुकूमत कर रहा है, सुम्मा स्तवा अलल अर्श, फिर उसने कायनात की भाग दौड़ जो है उसको संभाला। अफला ततज़क्करून, फिर क्या तुम होश में नहीं आओगे, ए गैर अल्लाह के पुजारियों, ए दूसरों पर भरोसा करने वालों, क्या फिर तुम शिर्क करने से बाज नहीं आओगे, क्या तुम नसीहत को कबूल नहीं करोगे। तो कायनात जो है इत्तफाकी हादसा के तौर पर जहूर में नहीं आई, अल्लाह ताला इसका खालिक है। सुमस्तवा लर्श के मानी क्या है, इसका इंतजाम बराह रास्त अल्लाह खुद कर रहा है, और जब बराह रास्त अल्लाह इंतजाम कर रहा है तो फिर इसका रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या है, मा लकुम मिन दूनिहि मिन वलीयिन वला शफी। लाजमी नतीजा इसका ये निकला कि जब सारे कामों की जो है वो अमूर की बाग अल्लाह के हाथ में है, तो सबकी पेशी भी उसके सामने होनी है, सारे मामलात का वो फैसला करेगा, कोई इंसान किसी की मदद नहीं कर सकता, कोई सिफारशी नहीं होगा। तो मानी क्या है, ना कोई वली है ना कोई शफी, इसकी नफी कर दी। यदब्बिरु الامر من السماء الى الارض, वो क्या करता है, यदब्बिर तदबीर करता है। तदबीर के मानी क्या होते हैं, किसी मामले के अंजाम नतीजे पर नजर रखते हुए गौर व फिक्र करना। दुबर से है ना, दुबर पीठ को कहते हैं ना, तो तदबीर क्या है, अब जैसे पीठ पीछे है ना, तो तदबीर क्या है कि किसी भी काम को जब आप शुरू करती हैं तो उसका एंड क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उस पर नजर रखते हुए गौर व फिक्र करते हुए फिर जो है, यानी उस पर नजर रखते हुए गौर व फिक्र करना, उसके बारे में प्लानिंग करना, उसके बारे में सोचना। तो अल्लाह ताला यहां पे बता रहे हैं कि आसमान से लेकर जमीन तक जितने भी काम हैं, जितने अमूर हैं, उनकी मनसूबाबंदी, उनकी तदबीर अल्लाह ही करता है। और कैसे करता है, अल्लाह जो भी करता है ना उसके अंजाम की भी तदबीर करता है। मसलन आपने क्लास में दाखला क्यों लिया, आपने ड्राइविंग लाइसेंस क्यों लिया, शादी क्यों की, आप कोई बिजनेस करती हैं, आप सोचती हैं इसका नतीजा क्या निकलेगा, आप यहां क्यों आए, कनाडा में क्यों आए, आप कोई भी काम करती हैं ऐसे तो नहीं सोचे समझे कर लेती, ऐसे ही किसी से दोस्ती नहीं कर लेती, ऐसे ही किसी की गाड़ी में नहीं बैठ जाती, किसी को अपनी गाड़ी में नहीं बिठा लेती। आप अब स्नो के दिन है, आपने बहुत सा नमक खरीद कर घर में रखा हुआ है, आप नमक डालती हैं स्नो होने के बाद, स्नो होने से पहले, क्यों, स्नो से पहले आप तदबीर कर रही हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, मुझे क्या करना है। सर्दियों से पहले आप जो है सर्दियों का इंतजाम करती हैं, खाने पीने में भी आप अच्छी चीजों का, डिफरेंट चीजों का इस्तेमाल करती हैं, गर्मियों में डिफरेंट, सर्दियों में डिफरेंट, कुछ चीजें एक ही जैसी होती हैं। तो मानी इसके क्या हैं कि अल्लाह ताला जो है, जो कायनात का खालिक है, मालिक है, और जो इसकी हुकूमत कर रहा है, ऐसा ही नहीं बल्कि क्या है, युदब्बिरुल अमर मिन अस्समाई इलल अर्द, वो आसमान से जमीन तक, ऊपर की दुनिया में भी और नीचे की दुनिया में भी, दुनिया के जितने मामलात हैं उसकी वो तदबीर करता है। फिर इसके मानी क्या हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात इतनी खूबसूरत जात है, इतनी बेहतरीन जात है कि वो जात जो है वो सारे कामों की तदबीर करती है। तो इसके मानी क्या हैं, इसके मानी जो हैं वो दरअसल ये हैं कि अल्लाह ताला ने ये कायनात जो बनाई तो इसको बनाकर छोड़ नहीं देगा। आसमान से जहां अल्लाह का अर्श है और लोहे महफूज है, तो वहां से अल्लाह तदबीर करता है, जमीन तक उसकी तदबीर के असरात पहुंचते हैं। इसका मतलब क्या है, जमीन ऊपर अल्लाह ताला ने लोहे महफूज पर जितने अहकामात जो है वो नाजिल किए हुए हैं, तो अहकाम नाजिल करना लोहे महफूज में जो चीजें महफूज हैं हर एक के बारे में, कब तक है ये कायनात, कितने लोग दुनिया में आएंगे, कितना जिएंगे, कितना खाएंगे, क्या करेंगे, कैसे मौत, जो कुछ भी है, तो ये जो भी अमूर हैं, जब आसमान पर लोहे लोहे महफूज में मौजूद हैं, तो जमीन पर अल्लाह इनको नाजिल करता है, जमीन पे इनका निफाज होता है, मौत, जिंदगी, सेहत, बीमारी, किसी को अता करता है, किसी को मना करता है, कोई अमीर है, कोई फकीर है, कहीं जंग हो रही है, कहीं सुलह है, कहीं इज्जत है, कहीं जिल्लत है, तो मतलब क्या है कि अर्श के ऊपर से अपनी तकदीर के मुताबिक ये तदबीरें करता है, तसरुफात करता है, सुम्मा या रुजू इलेही, फिर इसके हुजूर जाती है, या रुजू ऐन राजीम से है, उरूज भी इसी से है, मारिज है ना, सीढ़ियां, जीना, तो मानी क्या है इसके, के फिर क्या होता है, चढ़ जाता है इसकी तरफ, सुम्मा यारुजू इलेही, फिर इसकी तरफ चढ़ जाता है, फी योमिन, एक दिन में, और वो दिन कैसा है, एक दिन में उसकी तरफ चढ़ जाता है, काना मिकदारहू, और उस दिन की मिकदार कितनी है, अल्फा सनातिन, 1,000 साल, मिम्मा ताउदून, जो तुम गिनती करते हो, तुम्हारी गिनती के 1,000 साल उसका एक दिन है। यहां पे इसके मानी क्या है कि तुम्हारे नजदीक जो 1,000 साल की तारीख है वो अल्लाह ताला के यहां गोया एक दिन का काम है, एक दिन में अल्लाह अपनी स्कीम, अपनी प्लानिंग जो है वो फरिश्तों के सपोर्ट कर देता है। और फिर वो होता क्या है, आपको पता है ना, फरिश्ते सुबह और शाम के फरिश्ते जो हैं उनका आपस में तबादला होता है, वो ऊपर से ऊपर जाते भी हैं और ऊपर से नीचे आते भी हैं। जैसे आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हैं और क्या फरमाते हैं, मसलन सूरत हज में कहा, फयस्ताजिलूनक बिल अजाब वलन युखलिफ अल्लाह वादहु व इन यौमन इंद रब्बिका का अल्फ सनत मिम्मा तउदून, तो यहाँ पे क्या कहा, तुम्हारे रब के यहाँ का एक दिन तुम लोगों के शुमार से 1,000 वर्ष का हुआ करता है, यहाँ तो ये बात कही। अब सूरत मारिज में क्या कहा, साल साइलुम बे अजाबिम वाके लिल काफिरीना लैसा लहु दाफे मिन अल्लाह जिल मारिज तारुजुल मलाइकातु व रूहु इलेही फी यौमिन काना मिकदारुहु 50,000 सना। वहां पे क्या कहा, 50,000 साल। अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला जो बड़े दर्जों वाला है, दर्जा ब दर्जा काम करता है, चढ़ते हैं इसकी तरफ फरिश्ते और रूह एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल है। अब वहां पे 1,000 साल नहीं, 50,000 कहा, फसबिर सबरन जमीला इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक जगह 1,000 कहा और दूसरी जगह 50,000 साल कहा, और फिर इसमें आपस में तत्बीक कैसे करेंगे, इनमें आपस में लिंक कैसे कायम करेंगे, तो असल बात क्या है जो अल्लाह ताला बताना चाहते हैं, और वो बात ये है कि हमारा जो शुमार है वो अल्लाह के शुमार से जो है वो मुख्तलिफ है। तो ऐसा नहीं है कि एक जगह 1,000 कहा तो दूसरी जगह 50,000 साल, तो इसमें कोई तजाद है, बल्कि जो बात अल्लाह ताला बताना चाहते हैं, जो बात अल्लाह ताला समझाना चाहते हैं कि ये बातें जो हैं कि कब कयामत आएगी, या अल्लाह ताला की जो गिनती है, जो अल्लाह का हिसाब किताब है, ये गैब का इल्म है, तुम्हें तो इस बात का अंदाजा ही नहीं है, है ना, तुम्हारी गिनती में, तुम्हारे हिसाब किताब में, और अल्लाह की तदबीर में, अल्लाह के अहकाम और अल्लाह के हिसाब किताब में बड़ा फर्क है ना। जैसे अल्लाह जब चाहता है, जैसे चाहता है, जिस तरह से चाहता जो है वो हो जाता है, तो ये गैब की बातें हैं, और गैब की बातों के बारे में तुम कुछ भी जो है उसका अंदाजा नहीं कर सकते। तो युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्दी सुम्मा यारुजू इलैही फी यौमिन काना मिकदारुहू अल्फा सनातिम मिम्मा तउदून, वो आसमान से जमीन तक दुनिया के मामलात की तदबीर करता है, और इसकी तदबीर की रुदाद ऊपर इसके हुजूर जाती है एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार तुम्हारे शुमार से 1,000 साल है। تو اللہ تعالیٰ کیا بات بتا رہے ہیں کہ اللہ کے جو تخلیقی کارنامے ہیں یا کائنات کی پوری کی جو سکیم ہے یا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو بھی خبر یا آرڈرز دیے ہوئے ہیں، اس کا ظاہر اس کا باطن زمین کے اندر یا آسمان کے اندر ہے، زمان اوپر اوپر ہے یعنی آسمان میں، تو یہ انسانوں کا حساب کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حساب کتاب ہے۔ اور اہل دنیا کے حساب کے مطابق اگر 1000 سال کی مدت ہو یا پھر 50,000 سال کی مدت ہو تو اللہ کے ہاں کا تو وہ ایک دن ہے۔ تو بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ 1000 سال کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے کام ہیں جو اللہ نے وہ یعنی 1000 سال کا مطلب کہ بس ابھی وہاں پہ ہی رکھے ہیں اور نیچے تک پہنچنے میں ان کو جو ہے 50,000 سال لگتے ہیں۔ تو بہرحال یہ غیب ہی کی باتیں ہیں، اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان آیات کا اور اس آیت کا جو ہے وہ مطلب کیا ہے۔ تو جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ زیادہ جانتے ہیں، اور اس کا جو سیدھا سادہ جواب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا دن جو ہے وہ بڑا طویل ہے، اللہ کے ہاں کی گنتی ہماری گنتی سے بڑی مختلف ہے۔ تو ہمیں اپنی معلومات پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو معلومات ہیں اس پر یقین کرنا چاہیے۔ تو اہل مکہ بار بار کہتے تھے نا متا حاضل وعدو ان کنتم صادقین، تو اس کا یہ مطلب جو ہے وہ یہاں پہ بتایا گیا ہے، اور یہ بات بھی بتائی ہے کہ وہ قوم بڑی احمق ہے، وہ یہ سمجھے کہ اگر آج عذاب نہیں آیا تو کل آئے گا ہی نہیں۔ دن مہینے اور سال تو کیا چیز ہے، صدیاں بھی اللہ کے ہاں، انسانوں کی صدیاں بھی اللہ کے ہاں بڑی کوئی مدت نہیں ہے کہ اگر قیامت نہیں آتی، اگر گناہ کرنے پر سزا نہیں ملتی، اگر رسول اور قرآن کو جھٹ نالنے پر عذاب نہیں آتا تو پھر ان کی جو ہے وہ پکڑ ہی نہ ہو۔ ذالک عالم الغیب والشہادت العزیز الرحیم، وہی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالی کی صفات گنوائی گئی ہیں اور 4 صفات کا ذکر ہے۔ پہلی کیا ہے؟ عالم، وہ جاننے والا ہے، عالم ہے نا، اور اللہ کا علم کمال درجہ کا ہے، اللہ اس کا اختیار رکھتا ہے، ظاہری نہیں باطن بھی جانتا ہے، اوپر ہی نہیں نیچے بھی جانتا ہے، آسمان زمین آگے پیچھے اول سے لے کر آخر تک سب کچھ جانتا ہے۔ غیب، غیب کا مطلب کیا ہے؟ پوشیدہ کا جاننے والا۔ غیب چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں نا، اور غیب تو بے شمار چیزیں ہیں، فرشتے ہیں، جن ہیں، یا وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے ہم نہیں جانتے، پہاڑوں کے اندر کیا ہے، بیابان میں کیا ہے، ہمارے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، بہت سے امور ہیں، جنت جہنم کیسی ہے، ساری باتیں اللہ جانتا ہے۔ وہ شہادتی، اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ ظاہر کا جاننے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ظاہری طور پر جو چیز عیاں ہے یا ظاہر ہونے والی ہے، جو کچھ پیش آنے والا ہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ العزیز، عزیز کا مطلب کیا ہے؟ غالب، زبردست ہے وہ، کائنات میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اللہ کے ارادے پر مزاحم ہو سکے، اس کے حکم کو نافذ ہونے سے روک سکے۔ اللہ ہے غالب، ہم ہیں مغلوب، ہے نا۔ عزیز عزت سے بھی ہے، یہ اللہ ہے عزت والا، اور انسان کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر الرحیم ہے، رحیم کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک وہ عزیز ہے، غالب اور قوت قاہرہ والا ہے، لیکن اپنی مخلوق کے لیے وہ بڑا رحیم ہے، اپنی مخلوق کے لیے وہ بڑا شفیق ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کا تعارف کروایا گیا کہ جیسا علم اللہ کے پاس ہے کہ غیب اور شہادت، ظاہر اور باطن کا، اور جو صفات اللہ کی ہیں وہ بندوں کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ کرے، ہے نا۔ تو بندوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جب اللہ عزیز بھی ہے، رحیم بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کریں، اللہ کو اپنا وکیل بنائیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اور توحید میں شرک نہ کریں، اور ایک اللہ کی بندگی پر راضی ہو جائیں۔ جو ہستی اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے سکتی ہے، آسمان اور زمین کو بنانا اور ان کے درمیان کی ہر چیز، کوئی چیز جب اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں اور اللہ تعالی کی بندگی جو ہے وہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں. تو یہاں تک کا جو سبق ہے اس میں کیا ہے کہ آیت نمبر 4 اور 5 میں اور 6 میں کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے, دلائل دیے کائنات سے اور پھر اس کے بعد جو ہے توحید اختیار کرنے کی طرف توجہ دلائی, آخرت کا عقیدہ جو ہے وہ ذہن نشین کروایا, قرآن اور رسول جو ہے اس پر ایمان لانے کی دعوت دی.